दिन भर तारीख 10 अगस्त दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। राज्यसभा में कश्मीर पर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। 12 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक।
जितना गुजरात और राजस्थान के लिए दिल धड़कता है हमारा, जितना उड़ीसा और असम के लिए दिल धड़कता है, उतना ही सारे हिंदुस्तानियों का दिल जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भी धड़कता है। इस हकीकत को समझना है।
सुनिए कि कैसे कटते हैं कश्मीर में कर्फ्यू के दिन रात। दुनिया जहान में आज कहानी उस ईरानी प्रोफेसर की जो कभी हीरो था लेकिन जिसे फांसी दी गई।
ईरानियन एजेंसियों ने ये भी एक जमाने में कहा था कि ये ईरानियन खुफिया एजेंसी के लिए भी काम करते थे। अब इसमें सच्चाई क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीर को लेकर 12 अगस्त को सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर कोई भी बातचीत पाक प्रशासित कश्मीर पर होगी, कश्मीर के इस हिस्से पर नहीं। राज्यसभा ने कश्मीर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। कश्मीर में बीती 8 जुलाई को चरमपंथी बुरहान वानी की एक मुठभेड़ में मौत के बाद से हिंसा और प्रदर्शनों का दौर जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने आज दावा किया कि लश्कर ए तैयबा के चरमपंथी बहादुर अली को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर स्थित कंट्रोल रूम से निर्देश दिए जाते थे। इसमें पाकिस्तानी सेना का भी सहयोग रहता था। बहादुर अली को बीती 25 जुलाई को सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर से गिरफ्तार किया था। NIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहादुर अली के कथित इकबालिया बयान का एक वीडियो भी दिखाया गया। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बगदाद के सबसे बड़े अस्पताल में लगी आग की वजह से 12 नवजात बच्चों की मौत हो गई। 8 अन्य बच्चों और 29 महिलाओं को राहत कर्मियों ने बचा लिया। फायर कर्मियों को यारमूक अस्पताल में लगी आग पर काबू करने में 3 घंटे लगे। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली के तारों में हुई दिक्कत को बताया गया है। हादसे में अपने नवजात बच्चे को गंवाने वाली एक महिला ने कहा, मैंने अस्पताल के कर्मचारियों से अपने बच्चे के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि आप उसे मुर्दा घर में तलाश सकती हैं। मैं वहां गई। उन्होंने सभी पीड़ितों को इस तरह बक्से में बंद किया हुआ था जैसे कि वो जले हुए स्पंज हों। मैं अपने बच्चे को पहचान नहीं सकी। ये थे बगदाद के अस्पताल की आग में बच्चा गंवाने वाली एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावुशेवलू ने कहा है कि देश में पिछले महीने तख्तापलट की नाकाम कोशिश के दौरान यूरोपीय यूनियन की प्रतिक्रिया से तुर्की को निराशा हुई है। इससे यूनियन की सदस्यता लेने का उत्साह घटा है। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की पश्चिमी देशों से दूर हुआ तो ये उनकी गलती की वजह से होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि अब शायद तुर्की के 20% लोग ही यूरोपीय यूनियन की सदस्यता लेने के पक्ष में हैं, पहले 50% लोग इसके पक्ष में थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने कहा है कि नुरू द्वीप स्थित ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी केंद्र में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच कराई जाएगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर और मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज भारत से करते हैं। आज दिन भर राज्यसभा में कश्मीर के बिगड़ते हालात पर चर्चा हुई जिसके दौरान विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को हालात पर काबू न पाने पर आड़े हाथों लिया। विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सदन में कश्मीर पर अपनी बात रखनी चाहिए। राज्यसभा ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर पर प्रस्ताव पारित किया और कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सदन ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मविश्वास को दिल्ली और श्रीनगर में बातचीत के जरिए बहाल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने 12 अगस्त को कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है और प्रधानमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह ने कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की और कहा प्रधानमंत्री से चर्चा करने के बाद ही वो कश्मीर के बारे में बातें सदन में कह रहे हैं। उन्होंने कहा,
यह जो निर्देश सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मिला कि जितना संयम बरत सकते हो उतना संयम बरतें, जल्दी पैलेट गन का भी प्रयोग न करें, यही परिणाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंजर्ड हुए हैं वो 4,500 से अधिक है। और इस हकीकत को भी समझना चाहिए, कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी हकीकत को समझना चाहिए कि जितना बिहार और बंगाल के लिए हम लोगों का दिल धड़कता है, जितना गुजरात और राजस्थान के लिए दिल धड़कता है हमारा, जितना उड़ीसा और असम के लिए दिल धड़कता है, उतना ही सारे हिंदुस्तानियों का दिल जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भी धड़कता है, इस हकीकत को समझना चाहिए।
हमारे साथी जुबैर अहमद ने दिन भर राज्यसभा की कार्यवाही पर नजर रखी, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
आज राज्यसभा के सारे काम को छोड़कर सदस्यों ने कश्मीर पर भरपूर चर्चा की, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने की। उन्होंने कहा कि एक महीने में कश्मीर पर यह चौथी चर्चा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक सदन में खामोशी इख्तियार कर रखी है।
हमने बार बार कहा कि वजीर आजम को ही आना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया, लोकसभा से एड्रेस नहीं किया, राज्यसभा से एड्रेस नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की राजधानी कब तब्दील हो गई और पार्लियामेंट वहां कब से खुला है, लोकसभा और राज्यसभा, जहां से वजीर आजम इस देश के कश्मीर को एड्रेस करते हैं।
गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि कश्मीर को केवल वहां की खूबसूरती के लिए प्यार मत करो, बल्कि वहां के लोगों से भी प्यार करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में कश्मीर पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा था कि कश्मीरियों को वही आजादी हासिल है जो भारतीयों को है।
अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो मार्ग अपनाया था इंसानियत कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग है। जो आजादी हर हिंदुस्तानी अनुभव कर पाए, वो आजादी हर कश्मीरी को भी।
पीडीपी के सदस्य मोहम्मद फैयाज ने कहा कि बातचीत ही कश्मीर की समस्या का हल है।
गली गली कोचू कोचू में एक ही नारा है, वो है आजादी। यहाँ कोई कहे या ना कहे, मैं कश्मीर का हूँ, मैं वो कहूंगा, मैं अभी वहाँ कश्मीर से आया। इतना गुस्सा है उनमें, क्यों है गुस्सा? ये गुस्सा इसलिए है, जो वादे हमने उनके साथ किए कोई भी हमने नहीं निभाया। जो पीस प्रोसेस जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, अगर हमने उसको आगे बढ़ाया होता कि बातचीत ही मसले का समाधान।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओब्रायन ने कहा कि विशेषज्ञ पैनल को 2 महीने में नहीं बल्कि 2 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सदन में कहा कि कश्मीर का सवाल हमें हल करना पड़ेगा। कांग्रेस के कश्मीरी पंडित सांसद विवेक तनखा ने कहा कि इस पूरी चर्चा में कश्मीरी पंडितों को भूल नहीं जाना चाहिए। उनके अनुसार कश्मीरी पंडित कश्मीर लौटना चाहते हैं।
सच्चाई तो यह है कि कश्मीर के लोग पंडितों की बहुत इज्जत करते हैं, पंडितों को उन्होंने उस वक्त बचाया भी है। सच्चाई तो यह है कि पंडित वहां टीचर था, शिक्षक था, हर मजहब के बच्चों को पढ़ाता था। यह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश थी कि पंडितों को वहां से बाहर करो, तब उनका ये मूवमेंट कहीं ना कहीं दम इफेक्टिव होगा। ये सच्चाई है कि हर पंडित कश्मीर वापस जाना चाहता है, वो उसकी भूमि है।
1990 के दशक में करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन करके जम्मू और दिल्ली में पनाह ले ली थी। कश्मीर में पिछले महीने यानी 8 जुलाई को बुरहान वानी नामी एक युवा चरमपंथी की पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से हिंसा शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इस हिंसा में अब तक 56 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
कर्फ्यू में कश्मीर। पिछले 1 महीने से कश्मीर में कर्फ्यू जारी है और इसी पर आधारित ये नाम है हमारी उस श्रृंखला का, जिसकी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में जाने माने लेखक निदा नवाज बता रहे हैं कि कर्फ्यू के दौरान कश्मीरी लोगों की सुबह शाम और रातें कैसे कटती हैं, उन पर क्या बीतती है। सुनिए निदा नवाज के अनुभव, जो कि उन्होंने देखे, सुने, समझे और जाने।
बहार शान पैदा कर वलोहा बागवानों, नौ बहार शान पैदा कर नौ बहार।
सूरज आज भी मेरी खिड़की से झांक रहा है, लेकिन आज मुझे उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं, कोई यारी नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि जैसे ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये दिन भर मेरी कश्मीर घाटी का चक्कर लगा के आता है और मैं अपने इस कमरे में पिछले लगभग एक महीने से कैद हूँ। अक्सर सोचता हूँ कि मुझे किस अपराध में यह कर्फ्यू नाम की कैद की सज़ा दी गई है। मैं तो एक आम कश्मीरी हूँ, मैं न फौजी हूँ और न ही जहादी। मैंने न कभी प्रदर्शन ही किया है और न ही कभी पत्थरबाजी की है, फिर भी मेरा फ़ोन लगभग एक महीने से क्यों बंद किया गया है? मेरा इंटरनेट क्यों बंद किया गया है और मेरा केबल नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है? और ये सूरज, इसको तो कोई कर्फ्यू की पाबंदी ही नहीं, इस पर कोई पत्थर भी नहीं फेंक सकता और न ही कोई गोली या पैलेट गन से इसको मार सकता है। मैं तो कर्फ्यू की वजह से अपने ही आंगन में आकर इस सूरज को अपनी भरपूर निगाहों से भी नहीं देख सकता। हर एक कश्मीरी की ही तरह मैं भी दिन का आरंभ दूध वाली नमकीन चाय से करता आ रहा हूँ। पिछले लगभग एक महीने से बाजार बंद हैं, दूध कहाँ से मिलेगा? नमकीन चाय का काला काढ़ा पी पी कर अब मेरा दिमाग भी खराब होने लगा है। पिछले महीने की 12 तारीख से छोटे बेटे आशु की यूनिवर्सिटी परीक्षाएं आरंभ होने जा रही थीं। कितने चाव से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और कह रहा था कि डैडी, इस वर्ष मैंने पूरी तैयारी की है, हालात भी ठीक रहे हैं, अब की बार अच्छे मार्क्स आएंगे। और फिर अचानक, जैसे कश्मीर के पुर रौनक बाजारों, स्कूल जाते नन्हे मुन्ने बच्चों और मुस्कुराते चेहरों को किसी की नज़र लग गई। एक बार फिर प्रदर्शन, पत्थरबाजी, कर्फ्यू और हड़तालों का अशुभ मुहूर्त आरंभ हुआ। अब कुछ नहीं मालूम बेटे की परीक्षाएं होंगी भी या नहीं। उसको श्राप सा लग गया है, अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है, गुमसुम, किसी से बात तक नहीं करता। मैं कुछ कहता हूँ तो गुस्सा करता है, सरकार को बुरा भला कहता है, जहादियों को बुरा भला कहता है और गुस्से से कहता है, डैडी मेरे एग्जाम्स का क्या होगा? कहीं अब की बार भी एक साल का सेमिस्टर डेढ़ साल का ना हो जाए? फिर रोना शुरू करता है। मेरा वो बेटा जो फुर से मोटर बाइसिकल निकाल कर पूरा शहर घूम आता था, दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, मुसलसल कर्फ्यू की वजह से उसकी हालत अब देखी नहीं जाती। घर में तंग आकर कभी कभी सड़क तक निकलने की जिद भी करता है, मगर हम मियाँ बीवी दिन भर अपने बच्चों की पहरादारी करते रहते हैं। क्या भरोसा सड़क पर निकलकर पत्थरबाजों के पत्थर का निशाना भी तो बन सकते हैं, या फिर फौजियों की गोलियों या पैलेट गन्स का निशाना भी। बीवी भी परेशान है, सब्जी के नाम पर भेड़ बकरियों की तरह एक महीने से खाली साग खाते आ रहे हैं जो किचन गार्डन में लगाया था। घर पर रखा आटा और चावल अब लगभग ख़त्म हो चुका है। सोचता हूँ कर्फ्यू इसी तरह चलता रहा तो क्या करूँगा, बच्चों को क्या खिलाऊँगा, पूरा परिवार डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। या अल्लाह, मेरी इस कश्मीर घाटी के वो शांति के दिन कब फिर से लौट के आएंगे?
कर्फ्यू में कश्मीर, इस डायरी को आप हमारी सुबह की सभा में भी सुन सकते हैं। और आज आप सुन रहे थे निदा नवाज के अनुभव।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। कल इरोम शर्मिला पर सबकी नजरें लगी हुई थी और जैसा कि हमने आपको कल के कार्यक्रम में बताया था कि मणिपुर में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के खिलाफ 16 सालों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला ने किस तरह से अपना अनशन तोड़ा। बीबीसी से एक खास बातचीत की इरोम शर्मिला ने और इस बातचीत में उन्होंने राजनीति से लेकर निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। सुनिए इम्फाल से बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट।
कल शाम अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बाद इरोम शर्मिला के लिए आज एक नया दिन था। उन्होंने बीबीसी से कई मुद्दों पर बातचीत की। इरोम शर्मिला ने इंटरव्यू में बार बार इस बात को दोहराया कि उन्हें भगवान न बनाया जाए।
I have lots of errors. My qualities.
मैं दूसरों जैसी ही हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं अच्छी भी हूँ बुरी भी। क्या मुझ में कमियाँ नहीं हो सकती? लेकिन लोग मुझे बस अपनी ही नज़रों से देखना चाहते हैं। मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ।
इरोम शर्मिला ने कहा कि लोग शायद उन्हें शहीद की तरह ही देखना चाहते हैं।
They prefer me be a martyr to living a
मुझे लगता है कि लोगों को एक शहीद की तलाश है। उन्हें शायद मेरा विजय रूप नहीं चाहिए, बल्कि एक शहीद चाहिए। कई लोग अब भी मेरे रास्ता बदलने से इत्तेफाक नहीं रखते।
ये पूछने पर कि 16 साल नजरबंद होकर रहना कितना मुश्किल था, तो इरोम ने कहा,
मुझे बहुत ज्यादा अलग थलग महसूस होता है। आखिर गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो वे लोगों के साथ जुड़े रहे। मैं हमेशा से लोगों से कटी हुई सी थी, जैसे मैं कोई अपराधी थी। मैं ऐसे हालात में भी थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
राजनीति के मुद्दे पर भी इरोम शर्मिला ने खुलकर बात की।
अगर लोग वोट की इज्जत करेंगे तो राजनीति से गंदगी निकल जाएगी। राजनीति में गंदगी लोगों की सोच से भी जुड़ी हुई है, लेकिन अगर मेरे हाथ में शक्ति नहीं है तो कौन मेरी आवाज सुनेगा? मैं कब से झेल रही हूँ।
इंटरव्यू में कई बार इरोम भावुक हो गई। आखिर में उन्होंने अपनी बात कुछ यूं रखी।
लोग अगर चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशें मेरे खून से ही धुलें, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।
इरोम शर्मिला ने कहा है कि वो अभी अपने घर नहीं जाएंगी और इम्फाल में ही एक आश्रम में रहेंगी। वंदना, BBC, इम्फाल।
ईरान में एक प्रोफेसर को पिछले हफ्ते फांसी दे दी गई। ये वही प्रोफेसर थे जिनका 2010 में वतन लौटने पर हीरो की तरह स्वागत किया गया था। तब देश में कट्टरपंथी शासन होने की बात कही जाती थी। अब जबकि देश में सुधारवादी सरकार है, उन पर देशद्रोह का आरोप लगा। शाहराम अमीरी नाम के इस प्रोफेसर ने आखिरकार ऐसी क्या गलती की कि उन्हें फांसी की सजा मिली? दुनिया जहान में निखिल रंजन ने आज यही जानने की कोशिश की है। दुनिया जहान।
साल 2013 में तेहरान से मक्का आए एक ईरानी प्रोफेसर अचानक लापता हो गए। एक साल बाद वो अमेरिका के एरिजोना में नजर आए।
हम अकनून दर शहर तूसान दर एयालत एरिजोना एक शहर अमेरिका हस्तम।
जुलाई 2010 में वॉशिंगटन से पाकिस्तानी दूतावास की मदद से ईरान लौटे और 2016 में उन्हें ईरान में फांसी दे दी गई।
दुश्मन درجه یک ما شیطان بزرگ آمریکا।
किसी जासूस के लिए इस कहानी की शुरुआत और अंत में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता।
कोई हैरत नहीं है कि एक आदमी पकड़ा गया। और इतने इंस्टेंसेस होते हैं इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस, और उसके बाद उसका इस्तेमाल दोनों कर लेते हैं कभी कभी।
लेकिन किसी विज्ञान के प्रोफेसर जिसका संबंध परमाणु ऊर्जा से ना हो, उसके लिए ये कहानी थोड़ी रहस्यमय बन जाती है।
जब ये USA में गए, वहाँ पर दो वीडियो निकली बाद में। एक में कहा गया कि उनका अपहरण हुआ और उनके साथ टॉर्चर वगैरह किया। सऊदी ने भी किया, अमरीकियों ने भी किया। और उसके कुछ ही समय बाद दूसरा भी वीडियो निकला। उसमें ये दूसरी जगह से इन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से हूँ और मैं यहाँ खुश हूँ।
कहानी शुरू होती है 2009 में। ये वो वक्त था जब दुनिया के ताकतवर देशों की नजर में ईरान किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। विशाल तेल भंडार वाला ये देश अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा था और अमेरिका इसराइल के साथ ही पश्चिमी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचती जा रही थी। खासतौर से अमरीका के लिए इसको सहन करना ज्यादा मुश्किल था। इसराइल के दबाव में ईरान पर प्रतिबंधों का कसाव लगातार बढ़ रहा था और पश्चिमी देश भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। लेकिन इन देशों की सबसे बड़ी चिंता थी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में ठीक ठीक पता लगाना। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और प्रतिबंधों का दबाव भी जब काम न आया तो जासूस, खुफिया तंत्र और यहाँ तक कि कंप्यूटर वायरस की भी मदद ली गई। भारत की कैबिनेट के पूर्व विशेष सचिव राणा बनर्जी,
बहुत दिनों से एक शक था, विशेषकर जो पश्चिम के आणविक विशेषज्ञ थे वो ईरान की आणविक कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते थे महत्वपूर्ण बातें, और इनके पास ज़्यादा सूचना नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी दिनों से कोशिश की हुई थी कि ईरान से कुछ वैज्ञानिक कुछ अपहरण करें या कुछ अपने तरीके से उनको ले आया जाए और उनसे पूछताछ की जाए।
ऐसे ही समय में 32 साल के शहराम अमीरी उमरा के लिए तेहरान से मक्का गए। उस वक्त वो तेहरान की मलिक अश्तर यूनिवर्सिटी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के मेडिकल साइंस में इस्तेमाल के जानकार के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि ईरान में कुछ ऐसी भी खबरें थी कि वो ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े थे। मक्का में अचानक शहराम अमीरी गायब हो गए। काफी हो हल्ला मचा और ईरान ने अमेरिका पर अपने वैज्ञानिक को अपहरण करने का आरोप भी लगाया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। एक साल बाद 2010 में एक वीडियो सामने आया।
मैं शहराम अमीरी, कारशनोस व महقق دانشگاه صنعتی ملک اشتر।
मैं शहराम अमीरी हूं, तेहरान की मलिक अश्तर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। इस वक्त एरिजोना में हूं। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA मेरा अपहरण कर मुझे यहां लाई है।
खुद से शूट किए गए इस वीडियो में अमीरी ने दावा किया कि उनका अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपहरण कर लिया था और वो इस वक्त एरिजोना में है। अभी इस वीडियो की सत्यता साबित होती उससे पहले ही एक और वीडियो सामने आया, लेकिन इसमें अमीरी ने दावा किया कि वो खुद अपनी मर्जी से अमेरिका आए। कुछ ही दिनों बाद शहराम अमीरी वॉशिंगटन के पाकिस्तानी दूतावास में नजर आए और ईरान लौटने की इच्छा जताई। जुलाई 2010 में वो तेहरान पहुंचे और वहां उनका किसी नायक की तरह स्वागत हुआ, लेकिन एक साल बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर किसी गुप्त स्थान पर डाल दिया गया। क्या अमीरी को इस बात का एहसास नहीं था कि उन्हें ईरान में पकड़ा जा सकता है? अरब ईरान मामलों के जानकार सईद नकवी।
फैमिली रही होगी, इंड्यूस किया गया होगा, ऐसा इशारा किया गया होगा कि तुम आ जाओ फिर हम तुम्हें देखेंगे। ये भाई इसमें तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसमें ये थोड़ी है कि भाई शराफत, ये तो शराफत का खेल है ही नहीं, तो किसी तरीके से उसको ले आएंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि तो आओ तुम हमारे स्पाई हो, पर उससे कहेंगे कि तुम घर आओ और तुम्हें बिल्कुल देखभाल हम करेंगे, तुम्हें दूध मक्खन खिलाएंगे और जब आ गया तो उसके वारंट इशू कर दिए। ये है
शहराम अमीरी ने कहा कि CIA ने उनका अपहरण किया था और उनके साथ सऊदी और इसराइली अधिकारियों की मौजूदगी में गहन पूछताछ की गई। अमीरी ने यह भी कहा कि उन पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव बनाया गया। हालांकि अमेरिका यही कहता रहा कि वो अपनी मर्जी से अमेरिका गए। CIA को उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में काफी सारी जानकारी दी और उन्हें $50 लाख की रकम भी दी गई। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो अब अपने देश जाने के लिए आजाद हैं। उस वक्त अमेरिका की विदेश मंत्री रहीं हिलरी क्लिंटन।
मिस्टर अमीरी हैज बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हिज ओन फ्री विल एंड ही इज फ्री टू गो।
शहराम अमीरी अपनी मर्जी से अमेरिका आए थे और वो यहां से जाने के लिए आजाद हैं। वास्तव में कल उन्हें जाना था, लेकिन ट्रांजिट देशों के जरिए उन्हें भेजने के इंतजाम पूरे नहीं हो सके। इसके उलट ईरान ने 3 युवा अमरीकी पत्रकारों को उनकी मर्जी के बगैर रोक रखा है। हम उनसे अपील करते हैं कि मानवीय आधार पर उन्हें उनके परिवारों के पास लौटने दिया जाए।
अगर शहराम अमीरी सचमुच अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे तो फिर अमेरिका ने उन्हें क्यों छोड़ दिया? शहराम अमीरी भी अपने देश के मंसूबों से बिल्कुल अनजान हों ये मानना थोड़ा मुश्किल है। एक बात ये भी कही जा रही है कि शहराम अमीरी तो किसी देश में शरण लेना चाहते थे, लेकिन अमरीका के इनकार के बाद ये मुश्किल हो गया। राणा बनर्जी।
जिस वक्त अमीरी गए उस वक्त अमरीकियों का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, तो हो सकता है कि पहले से ये अमरीकियों के लिए काम करते हों, ये संभव है। और जो ईरानियन एजेंसियों ने बाद में कहा कि ये हमको शक था और हम इन पे नज़र रखते थे, ईरानियन एजेंसियों ने ये भी एक ज़माने में कहा था कि ये ईरानियन खुफिया एजेंसी के लिए भी काम करते थे। अब इसमें सच्चाई क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह अमीरी वापस आए उससे लगता है कि ये कुछ द्विधा में पड़ गए। जब ये अमेरिका गए ऐसा लगता है कि ये वहाँ के सिस्टम से या यहाँ वहाँ के चाल चलन में इतना खुश नहीं थे और वापस आने के लिए इन्होंने अपना मन बना लिया।
जानकारों का मानना है कि उसके पीछे मुमकिन है कि ईरान और अमेरिका की कोई अंदरखाने डील हुई हो, क्योंकि देशों के बीच जासूसों की लेन देन कोई अनोखी बात नहीं।
स्पाई के बारे में एक्सचेंज भी हो सकता है। एक जमाने में तो ये भी बात थी कि इनका भी एक्सचेंज, कोई शारा श्राउड करके एक लेडी थी जो अमेरिकन लेडी वेस्ट में, उनको डिटेन कर लिया था ईरान में, बाद में वो छोड़ दी गई। बीच में ये भी चर्चा थी कि अमेरिका का एक्सचेंज उनके साथ हो सकता है, संभावना है, और इस तरह की चीज़ होती ही है आमतौर पर, खासकर वेस्ट और रशिया के बीच में तो इतिहास है, इसमें हुआ है।
अमीरी के परिवार से उनका संपर्क बीते एक साल से नहीं था, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी। पिछले हफ्ते अमीरी का शव जब उनके परिवार को सौंपा गया तो उनके गले पर रस्सी के गहरे निशान थे और इससे ये अंदाजा लगा कि उन्हें फांसी दी गई है। बाद में न्याय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लंबी सुनवाई और अपीलों के बाद फांसी की सजा दी गई। न्याय विभाग का ये भी दावा है कि उन्हें सुनवाई के दौरान वकील की सुविधा भी मिली।
हम बहुत जो به دسترسی هایی که به اسرار سری و به کل سری نظام داشته।
अमरीका, ईरान और शाहराम अमीरी, सबके अपने अपने दावे हैं और इन सबके बीच दुनिया एक प्रोफेसर को पहले जासूस, फिर शरणार्थी और फिर नायक से कैदी बनते देख रही है, जिसमें आखिरकार उसे अपने ही देश की सरकार मौत के घाट उतार देती है। हैरानी इस बात से ज्यादा है कि ईरान में अब एक सुधारवादी सरकार है। इस सरकार ने दुनिया के ताकतवर देशों से संवाद किया, परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कसाव को ढीला किया। अब वो दुनिया के देशों से रिश्ते जोड़ रहा है और आर्थिक गतिविधियों को तेज कर रहा है। ऐसे हालात में इस तरह की मौत से ईरान में सुधारों की उम्मीद कर रहे लोगों को थोड़ा झटका जरूर लगा है। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
दुनिया जहां के इस कार्यक्रम को आप हमारे सुबह के प्रसारण में भी सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे रियो ओलंपिक की। और एक बार फिर चलते हैं नॉरिस प्रीतम की के पास, जो कि रियो में मौजूद हैं। नॉरिस प्रीतम, बताएं क्या चल रहा है भारत के लिहाज से?
देखिए, भारत का जहाँ तक सवाल है, रियो से खबर अच्छी नहीं है। एक के बाद शूटिंग में हम फ्लॉप हो रहे थे और जीतू राय पे सारी उम्मीदें गड़ी हुई थी, लेकिन 50 मीटर में पिस्टल में जीतू जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका है खास तौर से भारतीय शूटिंग को, और मुझे लगता है कि शूटिंग एक तरह से, जैसे अंग्रेजी में एक्सप्रेशन है कि हम वॉश आउट ही हो गया है। बहरहाल खेल है, चलता रहता है। लेकिन आर्चरी से थोड़ी सी खबर है कि बोमदाला देवी जो है वो आखिरी 16 में कम से कम जगह बना पाई है और भारत की स्टार तीरंदाज जो दीपिका कुमारी है उनका मुकाबला बाद में होगा इंडिविजुअल इवेंट में। तो तीरंदाजी में भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। और शाम को मिक्स डबल्स में टेनिस में सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी खेलेगी, जो कि उस पर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो बाकी शूटर्स के साथ हो रहा है वो उन्हीं के साथ भी हो। उसके बाद दिन में महिला हॉकी में आज भारत की टक्कर बेहद मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया, उससे होगी, और भारतीय पुरुष टीम का कल हॉलैंड से मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर ये आज का है। और दिन भर में खूब तेज बारिश होती रही है, तो इससे कितना इवेंट पर फर्क पड़ेगा सबसे बड़ी बात ये भी देखने। लेकिन शूटिंग का जहां तक सवाल है, वो भारत को बहुत बड़ा धक्का लगा है जीतू राय के ना क्वालिफाई करने से।
जी नॉरिस प्रीतम, सीधे रियो से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रियो के बाद बाकी खेल में क्या हो रहा है, रजत चांदना मौजूद है। रजत बताएं।
जी, भारत और वेस्ट इंडीज में जारी दूसरे दिन के दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में भारत का स्कोर फिलहाल 5 विकेट के नुकसान पर है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे इस मैच में पहले दिन वेस्ट इंडीज की गेंदबाजों की जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर टिक नहीं पाया। भारत के 4 विकेट महज 87 रन पर ही गिर गए। फिर अश्विन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मैच में वापसी की और नबाद 80 रन पर वो भी खेल रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चांदना। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक कश्मीर को लेकर 12 अगस्त को सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। NIA ने आज दावा किया कि लश्करे तैयबा के चरमपंथी बहादुर अली को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर स्थित कंट्रोल रूम से निर्देश दिए जाते थे। बहादुर अली को बीते 25 जुलाई को सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर से गिरफ्तार किया था। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।